पृथ्वी कपूर आर्यन से मिलने पेलिंग पहुंचे थे। पृथ्वी जब वहां आए थे तब वो बहुत गुस्सा थे, और उनका गुस्सा इस वजह से था कि सबके मनाने के बावजूद भी आर्यांश वापस आने के लिए तैयार नहीं था। आर्यांश को सजा देते वक्त पृथ्वी ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो अपनी जिंदगी जानबूझकर इतनी मुश्किल बना लेगा। हालांकि पृथ्वी के समझाने पर आर्यांश वापस अपनी जगह संभालने के लिए तैयार था, लेकिन फिलहाल वो सुमन के साथ उस घर में उस जगह पर तब तक रुकना चाहता था जब तक कि वो इस दुनिया को अलविदा ना कह दे। वहीं दूसरी तरफ पूरा दिन काम करने के बाद दीवा इतनी बुरी तरह थक चुकी थी, लेकिन घर जाकर उसे खाना बनाना पड़ रहा था। आज आर्यांश से उसकी बहस हो गई थी क्योंकि दीवा को पता चला था कि आर्यांश उसकी मदद करते हुए किसी न किसी से खाना भिजवा रहा था। अपने गुस्से में दीवा ने ये तक कह दिया था कि वो आर्यांश से कोई एहसान नहीं लेना चाहती है, क्या पता वो चार लोगों के सामने फिर उसी चीज के लिए उसे बेइज्जत करेगा। दीवा की इस तरह ताना मारने पर आर्यांश ने सोचा कि वो दीवा से अब दूर रहेगा, और अगर दीवा को उसकी मदद करना इतना ही नापसंद था तो वो किसी तरह से उसकी हेल्प नहीं करेगा। दीवा खाना बनाते हुए आर्यांश को कोस रही थी। वो धीरे से बड़बड़ाकर बोली, वो ये सब जानबूझकर कर रहा है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। पहले मेरी हेल्प की और बार बार मेरे सामने आया, अब जब मुझे उससे बात करनी है तो जानबूझकर छुप रहा है और मुझे तड़पा रहा है। उसे क्या लगता है कि मुझे ये सब समझ नहीं आता है? मुझे उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं भूल गई थी मुझे घर पर जाकर खाना बनाना है, वरना मैं जल्दी फ्री हो जाती। और कौन सा वो मेरे लिए खाना नहीं भेजेगा तो मैं भूखी रहूंगी। दीवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आज आर्यन से इस वजह से गुस्सा थी कि वो आज रेस्टोरेंट वाली घटना के बाद से उसके सामने नहीं आ रहा था, या इस बात से कि आज उसने उसके लिए खाना नहीं भिजवाया था। देखा जाए तो दीवा ने ही उसे ऐसा करने से मना किया था। खाना बनते ही दीवा ने शिव को आवाज लगाई, शिव शिव आ जाओ बेटा, साथ में डिनर करते हैं। सॉरी मम्मा को थोड़ा लेट हो गया, पर आई प्रॉमिस आगे से ऐसा नहीं होगा। शिव को आवाज लगाते हुए दीवा कमरे में गई तो उसने देखा वो सो चुका था। दीवा की नजर दीवार पर लगी घड़ी की तरफ गई तो रात के 10 बज रहे थे। सच में काफी देर हो गई है, मुझे शिव को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। मैं मॉम को कॉल कर देती हूँ, वो इसे लेने आ जाएगी, दीवा ने मायूसी से कहा। दीवा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ उसे इतना काम करना पड़ेगा। वो अपने काम के चक्कर में ना तो खुद खा पा रही थी और ना ही शिव का ध्यान रख पा रही थी। दीवा वहां से जा नहीं सकती थी, लेकिन शिव को भेज सकती थी। पहले उसने डिनर करने का सोचा, इसलिए वो खाना लेकर बाहर के हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। अकेले तो उसे खाना खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। दीवा की आंखों में आंसू आ गए थे और आज उसे कुछ ज्यादा ही अकेलापन महसूस हो रहा था। इसी के साथ दीवा को एहसास हुआ कि अगर उसकी जिंदगी में शिव नहीं होता तो शायद अब तक वो इसी अकेलेपन में घुट घुट कर जी रही होती। वो जानता था मेरे लिए चीजें भुलाना आसान नहीं है, तभी उसने जानबूझकर उस औरत को मेरे पास भेजा। तुम मुझसे इतना प्यार करते थे आर्यांश, फिर उस रात वो सब करना जरूरी था क्या? क्या हो जाता अगर तुम सहर की मौत का बदला मुझसे नहीं लेते? और वैसे भी वो तो जिंदा थी। मैं इतने टाइम तक तुम्हारे साथ रही, क्या एक पल भी तुमने मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया, जो तुम अपने बदले को भूलकर मुझसे प्यार करते? दीवा ने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और ऐसा नहीं था कि ये सवाल उसके दिमाग में आज ही उठ रहे थे। जब भी वो अकेली होती तब उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आता था। आर्यांश से जुड़ी हुई यादें उसके दिमाग में घूमने लगती थीं। आर्यांश थोड़ा दम बोलता था, पजेसिव था, शायद वो अपने एक मकसद के चलते दीवा के साथ था। पर हाँ, जब भी दीवा उसके साथ रहती तो उसे अपनी जिंदगी कुछ ज्यादा ही खुशनुमा नजर आती थी। आज फिर वही सवाल दीवा को परेशान कर रहे थे, तभी उसका मोबाइल बजा। दीवा ने देखा प्रार्थना का कॉल था, उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। मैं आपको कॉल करने ही वाली थी, दीवा ने हल्के लहजे में कहा ताकि उसकी आवाज से प्रार्थना को उसके दिल की बेचैनी का एहसास ना हो। जब भी मैं कॉल करती हूँ तुम यही कहती हो और खुद से कभी कॉल नहीं करती हो। डोंट टेल मी, अब डिनर कर रही थी और काम में इतना टाइम हो गया कि अकेले खाना खाना पड़ रहा है, शिव सो गया होगा, प्रार्थना बोली। दीवा ने जल्दी से इधर उधर देखा, उसके बिना कहे ही प्रार्थना सब समझ गई थी। एक पल के लिए दीवा को लगा कि वो उसके आसपास ही है। आप हमेशा समझ जाती हैं, दीवा ने मुस्कुराकर कहा, और इस बार उसकी मुस्कुराहट बनावटी नहीं थी। उसने गहरी सांस लेकर आगे कहा, यहाँ सच में सब कुछ बहुत मुश्किल है और मैं आपको बहुत मिस भी कर रही थी। मेरी वजह से शिव की लाइफस्टाइल भी पूरी तरह बिगड़ गई है। मॉम मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ आकर शिव को ले जाएं। लेकिन बेटा तुम अकेले कैसे रहोगी, प्रार्थना तुरंत बोली। डोंट वरी मॉम, यहाँ इतना काम होता है कि अकेले रहने का मौका ही नहीं मिलता। बस रात को घर सोने के लिए आती हूँ और इतनी थकान हो जाती है कि बेड के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, दीवा ने बताया। ठीक है, चलो थक गई हो तो थोड़ी देर आराम कर लो। अगर खुद से सब कुछ मेंटेन नहीं हो रहा है तो हाउस हेल्पर रख लो, कम से कम तुम घर पर आओ तो वो तुम्हारे लिए खाना तो तैयार रखे, प्रार्थना ने उसे समझाया। दीवा को भी प्रार्थना की बात सही लगी, उसने उसकी बात पर हामी भरी और फिर नवीन के बारे में पूछकर कॉल कट कर दिया था। शिव के सो जाने की वजह से दीवा ने भी ठीक से कुछ नहीं खाया था, उसे अकेले कुछ खाने का मन ही नहीं किया और वो खाना वापस किचन में रखकर सोने चली गई थी। अगली सुबह पृथ्वी और समीक्षा दोनों साथ में आर्यांश से मिल रहे थे। हालांकि समीक्षा का वहीं पर रुकने का मन था और वो वहां रुकने की जिद भी कर रही थी, पर आर्यांश ने साफ मना कर दिया था। जाने से पहले समीक्षा ने आर्यांश को गले लगाया और एक बार फिर वही बात दोहराते हुए कहा, हम मिसेज वर्मा का ट्रीटमेंट मुंबई में करवा सकते हैं, वहां ज्यादा फैसिलिटीज हैं, फिर तुम यहां रुकने पर क्यों अड़े हुए हो? मैं पहले भी उनकी सारी रिपोर्ट्स करवा चुका हूं, अगर 1% भी होप होती तो मैं उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में लेकर जा सकता था, आर्यांश ने बताया। समीक्षा ने उसकी बात पर हल्के से सिर हिलाया और आर्यांश से अलग हो गई थी। उन्होंने देखा पृथ्वी उनसे थोड़ा दूर खड़े हुए थे तो समीक्षा ने आर्यांश को घूरते हुए हल्के लहजे में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहां दीवा की वजह से रुकना चाहते हो? देखो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे से मनाना उसे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे रास्ते अब अलग हो चुके हैं और प्लीज आप किसी तरह की होप मत रखिए, ना ही मुझे दीजिए, आर्यांश ने हल्के चिढ़न भरे स्वर में कहा। वो जितना दीवा के बारे में ना सोचने की कोशिश करता उतना ही कोई ना कोई उसके बारे में जिक्र कर ही देता। समीक्षा हल्का सा मुस्कुरा दी थी। अगर आर्यांश थोड़ी देर समीक्षा के पास और खड़ा होता तो वो उसे दीवा के मनाने के तरीके तक बताने लगती, इसलिए समीक्षा को छोड़कर वो पृथ्वी से बात करने के लिए चला गया था। मॉम, डैड का ख्याल रखिएगा दादू, और अगर आपको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज समझ नहीं आए तो आप मुझे भेज सकते हैं, आर्यांश ने धीमी आवाज में कहा।
पृथ्वी ने उसकी बात पर हामी भरी। वो बिजनेस या आर्यांश को वापस आने का कहने के बजाय उसकी तरफ नम आंखों से देख रहे थे। उनका बर्ताव आर्यांश को भी थोड़ा हैरान कर रहा था, क्योंकि उसने यही सोचा था कि समीक्षा की तरह पृथ्वी भी इस बात की जिद करेंगे कि उसे उनके साथ ही वापस लौट जाना चाहिए। पृथ्वी ने आर्यांश के गाल पर हाथ रखा और प्यार से कहा, किसी और के पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बस अफसोस कि मैं उसे यहाँ नहीं ला सका, उम्मीद है एक बार तुम मिलने जरूर आओगे। उनकी बात सुनकर आर्यांश चौंपया और हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। वो जल्दी से बोला, दादी ठीक है ना दादाजी? पृथ्वी ने ना में सिर हिला दिया था। उन्होंने गहरी सांस लेकर खुद के जज्बातों को काबू किया और फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक भी नहीं है और मुझसे भी आजकल बात नहीं करती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने ही तुम्हें दूर भेजा था। एक बार मिलने जरूर आना, तुम्हें देखकर वो खुश होगी और मैं उसे जाकर बताऊंगा कि मैं तुमसे मिलकर आया हूँ और मैंने तुम्हें मना लिया, तो देखना वो बहुत खुश होगी और अच्छे से रिकवर भी करेगी। आर्यांश के चेहरे पर पछतावे के भाव उभर आए थे। उसे यही महसूस हो रहा था कि उसकी गलतियों की वजह से हर कोई सफर कर रहा था। आर्यांश की दादी बीमार थीं, लेकिन हाँ, उनकी हालत सुमन जितनी खराब नहीं थी। सुमन ने कभी अपने मुंह से आर्यांश से कुछ जाहिर नहीं किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट और दिन ब दिन बिगड़ती हालत देखकर आर्यांश खुद समझ चुका था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अच्छा, मैं भी कैसी बातें लेकर बैठ गया और बेवजह तुम्हें परेशान कर दिया। तुम मिसेज वर्मा का अच्छे से ख्याल रखो, और रही बात तुम्हारी दादी की, तो उसके लिए मैं हूँ, देखना वो जरूर रिकवर कर जाएगी, पृथ्वी ने हंसकर कहा। समीक्षा और पृथ्वी ने वहां से विदा ली और मुंबई जाने के लिए निकल गए थे। जैसे ही वो गए, सुमन आर्यांश के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। उसकी सोनी निगाहें इस वक्त काफी कुछ कह रही थीं। आपको उनके साथ चले जाना चाहिए था मिस्टर कपूर, मेरी वजह से आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, सुमन ने नजरें नीचे करके कहा। ठीक है, चला जाऊंगा, अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? आर्यांश ने भौहें उठाकर पूछा। सुमन बिल्कुल खामोश हो गई थी और उसकी इस चुप्पी में आर्यांश को अपना जवाब मिल गया था। वो हल्के से मुस्कुराया और आगे बढ़कर सुमन का हाथ पकड़कर बोला, अपने दिल की बात खुलकर कहना सीखिए सुमन माँ, मैं जानता हूँ इस घर के साथ आपकी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। आपके पति ने जब आपको घर से निकाल दिया था तो यही घर आपका सहारा बना था। अपने बच्चों के साथ में भी आपने उनका आखिरी समय बिताया था, तभी आप चाहती हैं ना कि आपका आखिरी वक्त भी यहीं पर बीते, और मैं आपकी कोई भी इच्छा को अधूरा नहीं छोड़ सकता। हालांकि मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ तो यही चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा यहाँ पर रहें। आप पूरी तरह ठीक हो जाइए, मुझे उम्र भर यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आपको इस तरह पूरे दिन काम करते देखकर अच्छा नहीं लगता है। आपने अपने दादाजी की बात मान ली होती तो आपको ये सब नहीं करना पड़ता, सुमन ने भीगी पलकों से कहा और अपनी नजरें उठाकर आर्यांश की तरफ देखा। ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, और आप चाहती हैं कि मैं ये सब ना करूँ, तो ठीक है, मैं रात वाला काम छोड़ दूंगा, आर्यांश ने सुमन की खुशी के लिए कहा और सुमन को अपने गले से लगा लिया था।
आर्यांश के गले लगते ही सुमन को ऐसा लगा जैसे वो अपने खुद के बच्चे के गले लग रही हैं। जब शुरू में आर्यांश ने उनकी जान बचाई थी और उनकी पोजीशन के बारे में सुमन को पता चला था तो वो हमेशा उसे अपने मालिक के तौर पर देखती थी, लेकिन आर्यांश ने हमेशा उन्हें अपनी माँ के तौर पर देखा था और एक बेटे की हर जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की थी। आज आर्यांश के गले लगने पर सुमन फूट फूट कर रो पड़ी थी और आर्यांश उन्हें हल्के हाथों से सहला रहा था। सुमन ने मन ही मन कहा, मिस्टर कपूर मेरे लिए कितना सब कुछ कर रहे हैं, काश मैं भी उनके लिए कुछ कर पाती और डॉक्टर गोयनका को समझा पाती कि मिस्टर कपूर पहले भी उनसे प्यार करते थे और आज भी करते हैं। सुमन ने यही सोचा कि उसे जब थोड़ा ठीक लगने लगेगा तब वो दीवा से मिलने जरूर जाएगी। उसने अपनी इस इच्छा को अपनी डायरी तक में लिख लिया था। वहीं आर्यांश और दीवा को मिले हुए पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। इस दौरान प्रार्थना पहले आकर शिव को अपने साथ लेकर चली गई थी। दीवा से अब आर्यांश का इस तरह इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर तुम मुझे ये साबित करना चाहते हो आर्यांश कपूर कि तुम्हारी हरकतों से मैं एक बार फिर से परेशान हो गई तो कंग्रेचुलेशंस, तुम जीत गए। तुमने मुझे अपने घर तक आने के लिए मजबूर कर ही दिया, दीवा दांत पीसते हुए बोली और अब वो आर्यांश से मिलने सीधा उसके घर जा रही थी। दीवा का अपने इमोशंस पर बिल्कुल भी काबू नहीं है। लगता है आर्यांश को उसका अच्छा खासा गुस्सा सहन करना पड़ेगा। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले भाग पर मिलते हैं।